एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत सुनने में आता है, हर जगह, खबरों में, बहसों में, कट्टरपंथ, फंडामेंटलिज्म। लेकिन इसका असली मतलब क्या है, ये समझना अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम देख रहे हैं मॉलिस रूथवेन की किताब फंडामेंटलिज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, और ये विषय वाकई बहुत जरूरी है। हम ये शब्द सुनते तो रोज हैं, कभी किसी नेता के लिए, कभी किसी ग्रुप के लिए, पर क्या हम वाकई समझते हैं कि इसके पीछे क्या है? मतलब दुनिया को समझने के लिए ये जानना तो अहम है ही, और रूथवेन की किताब ऐसा लगता है कि वो हमें बस ऊपरी बातों से आगे ले जाकर इसकी जड़ तक पहुंचा सकती है।
बिल्कुल, तो फिर शुरुआत लेखक से ही करते हैं। मॉलिस रूथवेन कौन है ये?
मॉलिस रूथवेन, हाँ, जाने माने आयरिश ब्रिटिश लेखक हैं, पत्रकार भी रहे हैं, एकेडमिक भी। उनका काम अक्सर धर्म, कल्चर और पॉलिटिक्स के जो उलझे हुए रिश्ते हैं ना, उन पर फोकस करता है।
अच्छा, और उनका बैकग्राउंड? आपने कहा पत्रकार भी रहे हैं।
हाँ, उनका तजुर्बा काफी फैला हुआ है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में काम किया है, अरबी सेवा में भी, और फिर बड़े अखबारों के लिए भी लिखा है, जैसे संडे टाइम्स, ऑब्जर्वर। कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी है, खासतौर पर इस्लाम और मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है।
उनकी कुछ और किताबें भी काफी जानी मानी है शायद, जैसे इस्लाम इन द वर्ल्ड।
हाँ बिल्कुल, और एक और थी, अ सैटैनिक अफेयर, जो सलमान रश्दी वाले मामले पर थी। तो साफ है कि वो मुश्किल और क्या कहते हैं, संवेदनशील विषयों पर लिखने से हिचकते नहीं।
सही कहा, और शायद यही बात उन्हें इस किताब के लिए खास बनाती है, मतलब पत्रकारिता और एकेडमिक्स दोनों का तजुर्बा।
एग्जैक्टली, उनमें वो जमीनी समझ भी है जो पत्रकारिता से आती है, और वो गहराई भी जो एकेडमिक विश्लेषण देता है। और वो किसी एक धर्म के अंदर से नहीं बोलते, नहीं बस बाहर से एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह देखते हैं। इस्लाम को वो अच्छे से समझते हैं, पर उनका नजरिया तुलनात्मक है, दूसरे धर्मों को भी साथ लेकर चलती हैं, थोड़ी सहानुभूति भी और थोड़ी आलोचनात्मक दूरी भी। वो एकेडमिक दुनिया और आम पढ़ने वाले के बीच का फासला कम करते हैं, ऐसा कह सकते हैं।
ठीक है, तो इस नजरिए से जब रूथवेन कट्टरपंथ को देखते हैं तो उनका मुख्य तर्क क्या है, क्या कहती है ये किताब?
देखिए, ये किताब असल में कट्टरपंथ की एक बहुत ही सधी हुई छोटी लेकिन गहरी पड़ताल है। ये हमें उन सेंसेशनल हेडलाइंस और मीडिया की बनाई हुई छवियों से, मतलब परे देखने में मदद करती है।
और उनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, आपने कहा था कुछ चौंकाने वाला सा है।
हाँ, चौंकाने वाला इसलिए कि ये हमारी आम समझ से बिल्कुल उल्टा है। रूथवेन कहते हैं कि कट्टरपंथी कोई सदियों पुरानी पारंपरिक चीज नहीं है, बल्कि ये असल में एक आधुनिक घटना है, पूरी तरह से मॉडर्न। ये मॉडर्निटी, सेक्युलरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इन सब के दबावों के खिलाफ एक रिएक्शन है, एक तरह से डिफेंसिव रिएक्शन। ये परंपरा का कोई बिगड़ा हुआ रूप नहीं, बल्कि परंपरा को बचाने और लागू करने का एक नया मॉडर्न तरीका है।
अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जिसे हम पिछड़ा हुआ समझ रहे हैं वो हमारे ही जमाने की पैदावार है। तो फिर ये किताब किस बड़े सवाल का जवाब दे रही है?
किताब यही पूछती है कि भाई, ये कट्टरपंथी आखिर है क्या बला? और जब हम अलग अलग धर्मों में, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, हिंदू, कुछ आंदोलनों को कट्टरपंथी कहते हैं, तो क्या उनमें सच में कुछ कॉमन है, या बस हमने एक लेबल चिपका दिया है अपनी सहूलियत के लिए?
और रूथवेन का जवाब, क्या वो कोई एक परिभाषा देते हैं कि कोई डेफिनेशन?
नहीं, यही तो मजेदार बात है, वो किसी एक सख्त परिभाषा के खिलाफ है। वो फिलोसोफर विटगेंस्टाइन की पारिवारिक समानता वाली अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं, फैमिली रिजेम्बलेंस।
अच्छा, फैमिली रिजेम्बलेंस, ये क्या है?
सोचिए, जैसे एक परिवार के लोग होते हैं, किसी की नाक मिलती है, किसी की आंखें, किसी का गुस्सा, पर कोई एक ऐसी खासियत नहीं होती जो सब में हो, फिर भी हम पहचान लेते हैं कि हाँ, ये एक ही परिवार के हैं।
समझ गया, तो कट्टरपंथ के मामले में ये पारिवारिक समानता कैसे दिखती है, क्या हैं वो मिलती जुलती बातें?
हाँ, तो जैसे हो सकता है सारे ग्रुप्स धर्म ग्रंथ को बिल्कुल शब्दशाह न मानते हो, पर कई मानते हैं, और जो नहीं मानते उनमें शायद औरतों की भूमिका, परिवार पर कंट्रोल, ये मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। या फिर लगभग सब में ये बात होती है कि उनके जो पवित्र ग्रंथ हैं वो इनफैलिबल हैं, उनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनकी व्याख्या भी अक्सर बड़ी सिलेक्टिव और लिटरल होती है, मतलब कुछ हिस्सों पर खास जोर, बाकियों को नज़रअंदाज। सेक्युलरिज्म का विरोध, मॉडर्न साइंस खासकर डार्विन के विकासवाद का विरोध, और शायद सबसे ज़रूरी, अपनी निजी आस्था को पब्लिक लॉ और पॉलिटिकल पावर में बदलने की ज़बरदस्त इच्छा। उनका मकसद यही होता है। ये कुछ लक्षण हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, एक परिवार की तरह।
ये पारिवारिक समानता वाला आइडिया तो वाकई दिलचस्प है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। आपने कहा था कि ये फंडामेंटलिज्म शब्द अमेरिका में शुरू हुआ, कैसे?
हाँ, ये कहानी भी इसके आधुनिकता को ही दिखाती है। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई थे। वो उस वक्त के लिबरल थियोलॉजी और डार्विन की थ्योरी से मतलब परेशान थे। उन्हें लगा कि ईसाई धर्म के जो मूल सिद्धांत है वो खतरे में है, तो उन्होंने इन मूल सिद्धांतों, द फंडामेंटल्स, के बचाव में कुछ लेख लिखे 1910 से 1915 के बीच, और उन्होंने खुद को फंडामेंटलिस्ट कहा।
अच्छा, तो ये शब्द वहीं से आया?
हाँ बिल्कुल। तो देखिए, इसका जन्म ही मॉडर्न विचारों के खिलाफ एक रिएक्शन के तौर पर हुआ। ये कोई पुरानी परंपरा नहीं थी, ये मॉडर्न चुनौतियों का सामना करने का एक नया मॉडर्न तरीका था। उनका मकसद था ईसाई धर्म की कथित प्योरिटी को बचाना।
और यहीं से वो पारिवारिक समानता वाली बात शुरू होती है जो अलग अलग धर्मों के आंदोलनों को कनेक्ट करती है।
हाँ, रूथ वेन इसी कॉन्सेप्ट से दिखाती हैं कि कैसे अमेरिका के ये शुरुआती प्रोटेस्टेंट कट्टरपंथी हों, या बाद के मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड हों, या इसराइल के धार्मिक राष्ट्रवादी हों, या भारत का हिंदुत्व आंदोलन हो, इन सब में कुछ ना कुछ धागे कॉमन हैं, भले ही उनके धर्म, इतिहास, समाज सब बहुत अलग हो।
जैसे कि क्या कॉमन है?
जैसे ग्रंथों की खास तरह की इंटरप्रिटेशन पे जोर देना, दुनिया को हम बनाम वो या अच्छे बनाम बुरे में देखना, खुद को सताया हुआ या मार्जिनलाइज्ड महसूस करना, और अपनी धार्मिक मान्यताओं को समाज और राजनीति पर लागू करने की एक तीव्र इच्छा, या कहें कि एक क्लियर मकसद, ये सब इन अलग अलग मूवमेंट्स को एक परिवार जैसा बनाते हैं।
चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं अलग अलग धर्मों से। अमेरिकी प्रोटेस्टेंट कट्टरपंथ की बात हुई, वो 1925 का स्कोप्स मंकी ट्रायल काफी फेमस है ना?
हाँ, वो तो क्लासिक केस है। एक स्कूल टीचर पर मुकदमा हो गया था क्योंकि वो डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ा रहे थे। विलियम जेनिंग्स ब्रायन जैसे बड़े नेता प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे। हालांकि टेक्निकली केस वो जीते, पर पब्लिक डिबेट में उनकी इमेज पिछड़ी हुई मानी गई।
लेकिन ये आंदोलन खत्म तो नहीं हुआ?
नहीं, बिल्कुल नहीं। 70 के दशक में जेरी फॉलवेल जैसे लीडर्स ने मॉरल मेजॉरिटी जैसे संगठन बनाए, और ये एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन गए। उन्होंने मॉडर्न मीडिया का इस्तेमाल सीखा, अपने अलग स्कूल कॉलेज खोले, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया। ये पैटर्न, मीडिया का यूज़, अलग इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ये हमें बाद में दूसरे कट्टरपंथी आंदोलनों में भी दिखता है। उनका मकसद साफ था, अमेरिकी समाज और राजनीति को अपने धार्मिक मूल्यों पर चलाना।
अच्छा, कैथोलिक और यहूदी धर्म में भी ऐसे आंदोलन हैं? आपने कहा था कि वहां शायद ये शब्द थोड़ा सावधानी से यूज करना चाहिए।
वैटिकन टू रिफॉर्म्स हुए थे चर्च को मॉडर्न बनाने के लिए, उनके खिलाफ एक ट्रेडिशनल रिएक्शन हुआ, जैसे आर्च बिशप लफेब्रे का मूवमेंट। इनका जोर ग्रंथों की लिटरल रीडिंग से ज्यादा चर्च की परंपरा, उसके हायरार्की पर था।
और यहूदी धर्म में?
यहूदी धर्म में दो तरह के ग्रुप्स दिखते हैं जो इस लेबल के करीब आते हैं। एक तो है हरेदी समुदाय, वो मॉडर्न दुनिया से काफी कटकर रहते हैं, और यहूदी कानून हलाका को बहुत सख्ती से मानते हैं। उनका मकसद है पवित्रता बनाए रखना, दुनिया से अलग रहकर। दूसरी तरफ है गुश एम्यूनियम जैसे धार्मिक राष्ट्रवादी ग्रुप, वो वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने को अपना धार्मिक और नेशनल ड्यूटी मानते हैं, और मसीहा के आने का इंतजार करते हुए इसराइल की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। उनका मकसद है दुनिया को बदलना।
तो ये दिखाता है कि कट्टरपंथ दुनिया से भागने वाला भी हो सकता है और दुनिया पर कब्जा करने वाला भी।
बिल्कुल, दोनों तरह के मकसद हो सकते हैं।
अब आते हैं इस्लामी कट्टरपंथ पर, जिसे अक्सर इस्लामवाद भी कहते हैं। रूथ वेन इसे पारंपरिक रूढ़िवाद से कैसे अलग बताते हैं, और ये बात भी दिलचस्प थी कि इसका नेतृत्व अक्सर मॉडर्न पढ़े लिखे लोगों ने किया।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पारंपरिक मौलवियों या उलमा के बजाय इस्लामवादी आंदोलनों के कई लीडर्स और मेंबर्स मॉडर्न एजुकेशन वाले लोग रहे हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। ये वो लोग हैं जो अक्सर वेस्टर्न कल्चर के असर से और अपने देशों की सरकारों के करप्शन और वेस्टर्नाइजेशन से मतलब मोहभंग महसूस करते हैं,
जैसे सैयद कुतुब मिस्र के।
हाँ, सैयद कुतुब एक दाल धारण है मुस्लिम ब्रदरहुड के विचारक। उन्होंने जाहिलिया यानी इस्लाम से पहले का अज्ञान का युग, उस कॉन्सेप्ट को लिया और उसे मॉडर्न मुस्लिम समाजों पर लागू कर दिया। कहा कि ये समाज भी भटक गए हैं, इन्हें वापस सच्चे इस्लाम पर लौटना होगा। उन्होंने जिहाद, जिसकी उन्होंने काफ़ी बड़ी व्याख्या की, के जरिए शरिया बेस्टेट बनाने की बात की। कुतुब के विचारों का असर बाद में अलकायदा जैसे ग्रुप्स पर भी पड़ा। उनका मकसद सिर्फ पर्सनल सुधार नहीं था, बल्कि पूरा सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम बदलना था।
और 1979 की ईरानी क्रांति, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था।
बिल्कुल, अयातुल्ला खुमैनी ने शिया थियोलॉजी को मॉडर्न एंटी इंपेरियलिज्म और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के साथ मिला दिया। ये एक मिसाल बन गया कि कैसे एक धार्मिक आंदोलन स्टेट पावर पे कब्जा कर सकता है। लेकिन इस्लामी कट्टरपंथी भी एक जैसा नहीं है, उसमें भी काफी वैरायटी है। कुछ का फोकस नेशनल लेवल पर स्टेट बनाना है, कुछ इंटरनेशनल जिहाद और टेररिज्म पर जोर देते हैं। और यहाँ भी वही बात है, कुरान और इस्लामी परंपराओं की व्याख्या बहुत सिलेक्टिव होती है। अक्सर जिहाद, शरिया लॉ, स्टेट पावर, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
पूर्व और दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत में हिंदुत्व आंदोलन का भी जिक्र है, रुथवेन उसे कैसे देखते हैं?
हाँ, रुथवेन भारत में हिंदू राष्ट्रवाद यानी हिंदुत्व की विचारधारा पर भी बात करते हैं। इसे वो RSS और BJP जैसे संगठनों से जोड़कर देखते हैं। उनके विश्लेषण के हिसाब से ये आंदोलन भारतीय नेशनल आइडेंटिटी को खास तौर पर हिंदू आइडेंटिटी के तौर पर डिफाइन करने की कोशिश है, और इसमें अक्सर माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमान, निशाने पर आते हैं। वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 1992 को एक अहम घटना मानते हैं।
और यहाँ भी वही पारिवारिक समानताएं दिखती हैं।
हाँ, वही पैटर्न, एक काल्पनिक गोल्डन एज या गौरवशाली अतीत को याद करना, मौजूदा सेक्युलर सिस्टम और माइनॉरिटी राइट्स से खतरा महसूस करना, और धार्मिक पहचान को स्टेट पावर से जोड़ने का ध्येय।
रुथवेन से कट्टरपंथ जैसे खालिस्तान आंदोलन और श्रीलंका या म्यांमार में उग्र बौद्ध राष्ट्रवाद का भी जिक्र करते हैं, इससे क्या पता चलता है?
इससे यही बात और पक्की होती है कि कट्टरपंथ किसी एक इलाके या एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। अक्सर ये नेशन बिल्डिंग, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स और ग्लोबलाइजेशन के दबावों के रिएक्शन में उभरता है। हर जगह रूप थोड़ा अलग होता है, पर अंदर के पैटर्न और उद्देश्य मिलते जुलते हो सकते हैं।
तो ये तो हुई अलग अलग मिसालें, अब वापस उन कॉमन थ्रेड्स पर आते हैं, वो पारिवारिक समानताएं। पहला था सेक्युलरिज्म को रिजेक्ट करना, मतलब धर्म और राजनीति अलग अलग, ये आइडिया नहीं मानना।
हाँ बिल्कुल, ये शायद सबसे बेसिक समानता है। सारे कट्टरपंथी आंदोलन इस विचार को खारिज करते हैं कि धर्म सिर्फ एक प्राइवेट मामला है। उनका मानना है कि धर्म को पब्लिक लाइफ, लॉ और पॉलिटिक्स का बेस होना चाहिए। उनका इरादा ही धर्म को समाज के सेंटर में वापस लाना है।
दूसरा सूत्र जो मुझे बड़ा मजेदार लगा, सिलेक्टिव मॉडर्निटी। ये सुनने में ये अजीब है, वो मॉडर्निटी के खिलाफ नहीं है क्या?
यही तो ट्रिक है, वो मॉडर्निटी के कुछ पहलुओं के जैसे सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इनके तो कट्टर विरोधी हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में वो पीछे नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
वो मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स, यहां तक कि मॉडर्न हथियार, इन सब का भरपूर इस्तेमाल करते हैं अपनी आइडियोलॉजी फैलाने और अपने मकसद हासिल करने के लिए।
हाँ, ये तो विरोधाभास है।
बिल्कुल, क्लासिक विरोधाभास है। अतीत की प्योरिटी का दावा करने वाले आंदोलन अपने फ्यूचर के लिए लेटेस्ट मॉडर्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं।
तीसरा, पैट्रियार्की और जेंडर कंट्रोल पर जोर। लगता है ये तो लगभग हर कट्टरपंथी मूवमेंट का एक हिस्सा है।
हाँ, ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। औरतों के शरीर, उनकी सेक्सुअलिटी, उनके सोशल रोल्स, उनके कपड़े, इन सब पर कंट्रोल रखना इन आंदोलनों के लिए जुनून जैसा होता है। वो अक्सर पवित्र पितृसत्ता यानी मर्दों के नेतृत्व वाला ट्रेडिशनल परिवार, उसे मॉरल डीके के खिलाफ आखिरी किला मानते हैं। परिवार को उस आइडियल समाज की नींव मानते हैं जिसे वो बनाना चाहते हैं। ये उनके सोशल एजेंडे का, उनके समाज को रीशेप करने के उद्देश्य का एक सेंट्रल पार्ट है।
और ग्रंथों की व्याख्या भी, जैसा आपने कहा, सेलेक्टिव होती है। दावा तो करते हैं ओरिजिनल पे लौटने का, पर चुनते वही हैं जो फिट बैठे।
हाँ बिल्कुल, दावा तो यही होता है कि हम धर्म के मूल शुद्ध रूप पर लौट रहे हैं, लेकिन असल में वो अक्सर ग्रंथों के उन हिस्सों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं जो उनके पॉलिटिकल और सोशल एजेंडे से मेल खाते हों, जैसे कानून, सजाएं, युद्ध, दुश्मनों की पहचान, और वो अक्सर उन हिस्सों को इग्नोर कर देते हैं या उनकी अलग व्याख्या करते हैं जो करुणा, माफी, टॉलरेंस या सोशल जस्टिस की बात करते हों, अगर वो उनके फौरन वाले इरादों में फिट नहीं बैठते। ये सिर्फ धार्मिक भक्ति नहीं है, ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की एक मॉडर्न स्ट्रेटजी भी है।
और आखिर में दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की आदत, अच्छे बनाम बुरे, हम बनाम वो।
हाँ, जिसे ड्यूअलिज्म कहते हैं, दुनिया को दो खेमों में बांट देना, एक तरफ हम यानी सच्चे विश्वासी पवित्र लोग, दूसरी तरफ वो यानी काफिर भटके हुए दुश्मन। ये सोच ग्रुप के अंदर जबरदस्त यूनिटी और आइडेंटिटी की फीलिंग पैदा करती है।
एक कॉमन दुश्मन चाहिए होता है।
बिल्कुल, एक साझा दुश्मन का होना, चाहे वो सेक्युलर लिबरल हों, फेमिनिस्ट हों, गे लोग हों, दूसरे धर्मों के लोग हों या फिर अपने ही धर्म के लिबरल लोग, ये ग्रुप को एकजुट रखता है और एक्शन के लिए मोटिवेट करता है। ये जो घेराबंदी वाली मानसिकता होती है ना, सीज मेंटालिटी, ये अक्सर टकराव को बढ़ाती है और उन्हें अपने ध्येय के लिए और कट्टर बनाती है।
तो अगर इन सब बातों को समेटें तो रुद्रवीन की किताब से जो मुख्य संदेश निकलते हैं, जो टेक अवेज हैं, वो क्या है? सबसे पहली और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात,
सबसे अहम सबक तो यही है, कट्टरपंथ आधुनिक है, प्रतिक्रियात्मक है, ये कोई पुरानी या पारंपरिक चीज नहीं है, ये मॉडर्निटी से पैदा हुआ संघर्ष है, ना कि मॉडर्निटी से पहले का कोई बचा कुचा हिस्सा, ये हमारे ही समय की उपज है।
हाँ, ये बात तो दिमाग में बैठ गई। दूसरा, कि कोई एक फिट फॉर ऑल परिभाषा न ढूंढे बल्कि पारिवारिक समानता से समझें।
बिल्कुल, ये हमें उनकी विविधता और समानताओं दोनों को देखने में मदद करता है, ये हमें ओवर सिंप्लीफिकेशन से बचाता है। हम देख पाते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर एक जैसे दबाव, एक जैसी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं।
तीसरा, पितृसत्ता और महिलाओं पर नियंत्रण की सेंट्रल भूमिका, ये कोई साइड इशू नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
ये उनके सोशल विजन का और मॉडर्न वैल्यूज के खिलाफ उनकी लड़ाई का एक मेन बैटल ग्राउंड है।
हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि सामाजिक बदलाव की बहस कैसे फौरन औरतों के रोल और कपड़ों पर आ जाती है।
हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए समाज को बदलने का उद्देश्य कितना गहरा है और परिवार और जेंडर रोल्स उसमें कितने अहम है।
चौथा, धर्म ग्रंथों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों का सिलेक्टिव इस्तेमाल, ये उनकी प्रैक्टिकलिटी और स्ट्रेटेजिक सोच दिखाता है, वो सिर्फ आइडियलिस्ट नहीं है।
और पांचवा, ये आंदोलन असल में पॉलिटिकल होते हैं, इनका आखिरी मकसद सिर्फ पर्सनल मोक्ष या धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है बल्कि पब्लिक लाइफ, लॉ और स्टेट को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से रीशेप करना है। ये पावर और इन्फ्लुएंस की लड़ाई भी है।
सही कहा, ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, ये समाज और स्टेट पर कंट्रोल का एक साफ एजेंडा है।
रुथवेन की किताब में कुछ ऐसी लाइंस या आइडियाज हैं जो वाकई याद रह जाते हैं, क्या हम उनमें से कुछ पर बात कर सकते हैं जो इन सब बातों का निचोड़ हों?
हाँ जरूर, एक विचार जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, उसे रुथवेन कुछ ऐसे कहते हैं, मैं उसका भाव बता रही हूँ। कट्टरपंथ परंपरा का सीधा आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि परंपरा के खत्म होने या खतरे में पड़ने के डर से उसका जोरदार दावा है। ये फिर से वही आधुनिक प्रतिक्रियात्मक नेचर वाली बात है, ये तब उभरता है जब लगता है कि हमारी परंपरा खतरे में है।
बिल्कुल, और दूसरा आइडिया उनके एनालिसिस के तरीके पर है, भावानुवाद। एक सिंगल परिभाषा ढूंढने के बजाय पारिवारिक समानता देखना कहीं ज्यादा फायदेमंद है, ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया कॉम्प्लेक्स है और उसे समझने के लिए हमें फ्लेक्सिबल टूल्स चाहिए, रेडीमेड बॉक्स नहीं।
तीसरा, जो बार बार सामने आता है, भावानुवाद, पवित्र पितृसत्ता को फिर से कायम करने की कोशिश एक लगातार दिखने वाली और सेंट्रल खासियत है। ये जेंडर और फैमिली कंट्रोल वाले मुद्दे को बिल्कुल सेंटर में लाता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये इन मूवमेंट्स के डीएनए का हिस्सा है, उनके सोशल रिकंस्ट्रक्शन के ध्येय का कोर।
चौथा कथन उस पैराडॉक्स को दिखाता है जिसकी हमने बात की, भावानुवाद। कट्टरपंथी मॉडर्निटी के औजारों के इस्तेमाल में खास तौर से सिलेक्टिव होते हैं, यानी मॉडर्निटी से लड़ने के लिए उसी के हथियार, ये उनकी अडेप्टेबिलिटी दिखाता है।
और पांचवा, हिंसा के मुद्दे पर एक बहुत ही बारीक और जरूरी बात, हिंसा कट्टरपंथ का कोई जरूरी हिस्सा नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी विचारधाराएं अक्सर ऐसी स्थितियां और तर्क पैदा करती हैं जहां हिंसा को धार्मिक रूप से जायज ठहराया जा सकता है। मतलब हर कट्टरपंथी हिंसक नहीं होता, पर यह आइडियोलॉजी हिंसा के लिए वैचारिक जमीन तैयार कर सकती है।
ये सारे पॉइंट्स तो बहुत सोचने वाले हैं। अब सवाल ये है कि इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या कनेक्शन है, हम इन आइडियाज को आज की दुनिया को बेहतर समझने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो शायद मीडिया को लेकर है।
हाँ बिल्कुल, जब हम मीडिया में एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, कट्टरपंथी जैसे लेबल सुनते हैं तो हम रुक कर सोच सकते हैं।
लेबल लगाने से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि उस ग्रुप की मांगें क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं, वो किस चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं, उनका असल मकसद क्या है। इससे हम बनी बनाई छवियों और पूर्वाग्रहों से बच सकते हैं।
और जो दुनिया भर में पॉलिटिकल झगड़े चल रहे हैं उन्हें समझने में भी ये मदद कर सकता है।
निश्चित रूप से, चाहे वो इसराइल फिलिस्तीन का मसला हो, अमेरिका में धर्म और राजनीति का गठजोड़ हो, भारत में हिंदुत्व की राजनीति हो, या मिडिल ईस्ट में जिहादी ग्रुप्स का उभार, रूथ वेन का एनालिसिस हमें इन झगड़ों के सतह के नीचे जो गहरी आइडियोलॉजिकल जड़ें हैं और उनके पॉलिटिकल इरादे हैं उन्हें समझने में मदद करता है। हम सिर्फ नारों से आगे देख पाते हैं।
क्या ये अलग अलग धर्मों और कल्चर के बीच बातचीत को बेहतर बनाने में भी मददगार हो सकता है?
मुझे तो ऐसा लगता है। जब हम ये देखते हैं कि ये पारिवारिक समानताएं अलग अलग धर्मों के आंदोलनों में हैं, तो किसी एक धर्म या कम्युनिटी को पूरी तरह विलन बनाना मुश्किल हो जाता है। हमारा ध्यान इस बात पर जा सकता है कि कौन से सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रेशर हैं जो इस तरह के रिएक्शंस को जन्म दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम किसी धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को ही दोष दें।
और क्या ये हमें अपने आसपास भी, मतलब हमारे समाज में भी कट्टरता के सिग्नल्स को पहचानने में मदद कर सकता है, चाहे वो धार्मिक हो या ना हो?
बिल्कुल, वो पैटर्न, शिकायत और खुद को विक्टिम मानना, दुनिया को हम बनाम वो में बांटना, किसी करिश्माई लीडर पर आंख बंद करके भरोसा करना, विचारों में जरा भी फर्क बर्दाश्त न करना, ये सब किसी भी ग्रुप में, चाहे वो धार्मिक हो, पॉलिटिकल हो या कोई और, बढ़ती हुई कट्टरता या एक्सट्रीमिज्म का सिग्नल हो सकते हैं।
हाँ, और ये व्यक्तिगत स्तर पर भी सोचने को मजबूर करता है। अपनी गहरी आस्था या अपनी आइडियोलॉजी के लिए कमिटमेंट और एक रिजिड, दूसरों को बाहर करने वाली इनटॉलरेंट सोच, इसके बीच की पतली लाइन कहाँ है? हम अपने समाज में डाइवर्सिटी और ओपननेस को कैसे बढ़ावा दें बिना ऐसे डिफेंसिव रिएक्शंस को भड़काएं? ये आसान सवाल नहीं है।
बिल्कुल, और यही इस किताब की खूबी है कि वो हमें इन मुश्किल सवालों से जूझने के लिए सोचने का सामान देती है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे याद रखने वाली बात रही वो शायद यही है कि कट्टरपंथ कितना मॉडर्न है। हम इसे अक्सर अतीत की कोई चीज मान लेते हैं, पर ये तो हमारे आज के समाज का ही आईना है, उसकी चुनौतियों की ही उपज है।
मेरे लिए पारिवारिक समानता वाला कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल लगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करने और चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने से बचने का एक शानदार तरीका है। और ये देखना भी काफी चौंकाने वाला था कि कैसे पेट्रियार्की और औरतों पर कंट्रोल का मुद्दा इतने अलग अलग धार्मिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एक जैसा सेंट्रल रोल निभाता है। ये दिखाता है कि सोशल कंट्रोल का उद्देश्य कितना गहरा है।
तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, कट्टरपंथ एक कॉम्प्लिकेटेड, मॉडर्न और बहुत हद तक पॉलिटिकल घटना है। इसे समझने के लिए सतही लेबल काफी नहीं है।
हाँ, बल्कि एक बारीक और सहानुभूति भरा एनालिसिस चाहिए।
और मालिस रुथवेन का काम हमें ठीक यही एनालिसिस करने के लिए जरूरी नजर और समझ देता है।
बिल्कुल, ये हमें अपनी दुनिया को और उसके कुछ सबसे मुश्किल सवालों को ज्यादा गहराई से देखने में मदद करता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।